نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير پارا نمبر 11 ہے یا تزیرون آیت نمبر 97 سے شروع کریں گے سورة توبہ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے ان کو ان احکام کا علم نہ ہوا جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا اور بہت علم والا ہے اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تو مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں برا وقت آنے ہی والا ہے ان پر اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے یہ تھی آیت نمبر 97 سے 99 ان آیات کا عنوان ہے سادہ لوگوں کی سادہ دینداری یہ ایک ٹاپک ہے دوسرا ٹاپک ہم اس کا لکھیں گے اسلام سے بے وفائی برداشت نہ کی جائے گی ہم نے ان آیات سے پیچھے پارے کے آغاز اور 10ویں پارے کے آخر میں کچھ لوگوں کا تذکرہ دیکھا کہ جن میں کچھ تو منافق تھے کہ جن کو میدان جنگ کے لیے نکلنا اور مشکل حالات میں اسلام کے لیے قربانی دینا اتنا مشکل لگا کہ مختلف ہیلے اور بہانوں کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کو پسند کیا لیکن 10ویں پارے کی بالکل آخری آیات بہت ہی خوبصورت منظر ہمارے سامنے لائی تھیں کہ جس کے اندر لوگ اسباب کی کمی کی وجہ سے روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے کیونکہ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی سواریاں نہیں تھیں ہر معاشرے میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو نیک کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ موقعوں کو پا کے آنکھوں کو بند کر کے اور عذر تراشنے والے بن جاتے ہیں اسی طرح یہاں کچھ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو کسی معاشرے کے اندر بہت زیادہ تو نہیں ہوتے لیکن دیہاتوں اور جنگلوں میں زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اس دور میں بدوی کہتے تھے جنگلوں میں رہنے کی وجہ سے آج کے دور میں آپ ان کو دیہاتی کہہ سکتے ہیں یا وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد گھروں میں کام کرنے کے لیے شہروں میں آتے والے لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اور دیہاتوں میں رہنے کی وجہ سے جب انسان جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے تو اس کی عادات بھی کچھ ویسی ہی اجڑ ہونے لگتی ہیں ہم انسان ہیں ہم بہت جلدی اپنے ارد گرد کا اثر لیتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا کیونکہ جانور نرمی تو نہیں مانتے تو جو جانوروں کو سارا دن ہانکے گا اور ان کا انتظام کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا حال وہی ہوگا جو کہ پھر کسی بھی جانوروں کو پالنے والے کا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت زیادہ مکلف نہیں بنوایا اسی طرح وہ لوگ جو سخت مزاج لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے مزاج بھی سخت ہونے لگتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان نرم بات سننے کا عادی نہیں رہتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج شہروں کے اندر رہنے والے لوگوں کا بھی دین کا مزاج جو ہے وہ سخت مزاج ہو گیا اجٹ مزاج ہو گئے دین کی بات کرتے وقت بھی عموماً ہماری ٹون اسی قسم کی ہونے لگتی ہے کہ جیسے کہ ہمارے سامنے وہ انسان نہیں کہ جن کے اندر دل بھی ہے اور دل کے اندر جذبات بھی ہیں تو لہٰذا اس ساری بات کو سننے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی دی وہ گھرانہ خیر پا گیا اور سختی جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی عذاب کی بھی علامت ہے اور اسے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ کم پڑھے لکھے ہونے کی بھی دلیل ہے ہم دوسروں کو چھوڑ دیں صرف اپنے انداز کو دیکھ لیں اور وہ نرمی نہیں جو ہم دوستوں میں بات کرتے ہوئے کرتے ہیں وہ نرمی نہیں جو ہماری باہر کے لوگوں سے بہت رسمی باتیں کرتے ہوئے ہوتی ہیں صرف چند جملے اپنے لیے نوٹ کر لیجئے کہ جب میں اپنے بچوں سے بات کرتی ہوں تو میرا کیا سٹائل ہوتا ہے جب میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں تو میرا کیا سٹائل ہوتا ہے اور جب میں اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہوں تو میرا کیا سٹائل مسائل ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جب میں اپنے گھر کے ملازموں سے بات کرتی ہوں تو کیا حال ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دیہاتوں سے آنے والے جو ہیں وہ تو ہم سے زیادہ نرم بات کریں اور ہم شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک وبال بنا لیں. دوسری چیز اس حصے میں جو ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والوں کے پاس مینز آف کمیونیکیشن اور علم حاصل کرنے کے وہ ذرائع نہیں ہوتے جو کہ شہروں میں رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے اب دیکھیے کہ بعض دفعہ فیشن کے نام پہ اتنی بے حیائی نہیں ہوتی. خواتین جو دیہاتوں سے آتی ہیں اور بالکل کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کے لگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، یاد رکھیے کہ جتنی نعمت ملتی ہے اتنا حساب زیادہ ہوتا ہے. شہروں والوں کا حساب سخت ہوگا. جس طرح یہ لوگ سادہ مزاج ہیں، ان کو بہت زیادہ نہیں پتا، حالانکہ اس سے آج کے دور میں تو جب کمیونیکیشن عام ہو گئی اب تو یہ فرق رہا ہی نہیں کہ شہر کیا اور گاؤں کیا. یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب یہ دیہاتوں میں اور دور جنگلوں میں رہتے تھے، نہ مائک تھے، نہ کمپیوٹر تھے، نہ ٹیلی ویژن تھے، نہ ریڈیو تھے. یہ سہولت کی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک آفاقی قانون دے دیا کہ جس تک ہدایت کا ذریعہ کوئی نہیں پہنچا اور وہ صرف اگر فرائض کی سطح پہ بھی جی لے گا تو اللہ تعالیٰ سے سادہ دینداروں کو کل آسان حساب سے گزار دے گا. لیکن جب یہ سادگی اس حد سے گزر جائے کہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ رہیں، غداری پہ آ جائیں، تو پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو برداشت نہیں کرے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک اتنا اسلام کے خلاف گرج ہوتا ہے کہ وہ دور رہنے کے باوجود بھی اسلام کے خلاف اپنے تمام کاموں کے اندر سرگرم ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں ہیں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو خوب جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں گے. یہ ہے آیت نمبر 100 سے 101. اس کے دو ٹاپک لکھیے گا. پہلا ٹاپک ہے اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اور دوسرا ٹاپک اپنے ساتھ رہنے والوں کے آئینے میں خود کو پہچانو. پہلی بات سابقون الاولون کی تھی. حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی کسی کی زندگی میں کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو ابتدا میں وہ نیکی لوگوں کو بڑی اجنبی نیکی لگتی ہے، لوگ عادی نہیں ہوتے اس بات کو سننے کے. ایسے وقت میں کوئی بندہ اگر اس سچے دین کی دعوت پہ لبئی کہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ماحول میں اجنبی بن گیا، اپنوں میں بیگانہ اور غیر بننے لگتا ہے. ایسے وقت میں جو اللہ کی دعوت کو قبول کر لے اللہ اس کو مہاجر کہتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنوں کو اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو میرے لیے چھوڑا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، اس کو اسلام کی سچائی اور اچھی لگنے لگتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کل تک جو چیز اجنبی لگی تھی آج یہ خود اس دین کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے. ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ انصار قرار دیتا ہے. جب کسی معاشرے میں تھوڑے سے مہاجر اور تھوڑے سے انصار جم جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھتے دیکھتے اتبعوہم احسان کے درجے پہ آنے لگتے ہیں. ہر چیز ماحول کے اثر سے پھیلتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی پکار لوگوں تک پہنچائی، شروع میں اجنبی لگی، لیکن چند سعید روحیں تھیں جنہوں نے لبیک کہا اور آمنا وصدقنا کہہ کے اس مشکل ماحول کے اندر بھی اپنے آپ کو دین پہ جمایا. شروع میں لوگوں نے پتھر بھی مارے، لوگوں نے تکلیف بھی دی ہوگی، لیکن نتیجہ کیا تھا کہ جب وہ جمے رہے تو وہ لوگوں کے لیے بھی ایک گہری گھنی چھاؤں بن گئے. جس طرح وہ درخت جو آنے والے پتھروں سے گرے نہ اپنی جڑوں پہ قائم رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ بعض دفعہ وہی لوگ جو ایک وقت میں اس درخت کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں وہ انہیں لوگوں کو سایہ بھی دینے لگتا ہے. دین اسلام کی یہی ہو کل تھی، یہی آج ہے. کل کے دور میں اگر اسلام اجنبی تھا تو آج کے دور میں بھی کوئی لوگوں کو بہت فیملیئر دین نہیں لگتا. جب دین کے اوپر اتنی خواہشات کے پردے ہوتے ہیں تو سچا دین جب عام ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو واقعی ابتدا میں وہ بات نہیں لگتی ہے، لیکن اگر تھوڑے سے لوگ بھی اس دعوت کے اوپر جم جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یہی آتی ہے کہ بعد میں لوگ انہی کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں. اور اللہ کا انصاف اور انصاف سے بڑھ کے اللہ کا احسان دیکھیے کہ پھر ہر آنے والے کو پچھلے انسان کے پلے میں ڈال کے اس کی نیکیوں میں اس کو شامل کر لیتے ہیں. یہی چیز انسان کو کل جنتوں میں لے کے جائے گی. جو شخص آج اللہ کی رضا کے لیے چلنے کے لیے بھاگے گا اس کو جلدی جنت ملے گی. یہاں سابقون الاولون کی بات ہوئی. کبھی بھی نیکی کا کوئی موقع ہے تو اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیے. آپ دیکھیے کہ کہیں سیل لگے اور اس کا اشتہار دیکھیں تو کیا انتظار کرتے ہیں کہ اچھا جانے دیتے ہیں، ذرا آخری دن ہوگا تو پھر جائیں گے وہاں.
चलो वहां से कुछ लेंगे नहीं, हम तो डेट गिन के नोट करके रखते हैं क्योंकि बाद में तो बची खुची रह जाएंगी चीजें, और हो सकते चीजें हों लेकिन वक्त ना हो, अच्छी चीजें पहले निकल जाती हैं। इसी तरह याद रखिए कि एक बास दफा नेकियों की सेल भी लगती है। हमारी कौम का एक मिजाज है खत्म का, आखिरी दिन जाना हमें मस्जिदों में अच्छा लगता है क्योंकि आज खत्म की दुआ है, आज तकमीले कुरान है। हमें बताइएगा कुरान की तकमील कब है, हम इब्तदा से ज्यादा तकमील के आदी हो गए। इसी बात को जहन में रखिएगा कि क्या सेल के आखिरी दिन में जाने वाला वो चीज पा सकता है जो पहले दिन जाके पाने वाला होता है। वहां तो हो सकता है हमारे रोज के चक्कर हों के देखें और क्या है। तो इसी तरह किसी मुआशरे में नेकियों की दावत पे लब्बैक कहने वाले लोग जो होते हैं वो कुछ पा लेते हैं जो दूसरे लोग नहीं पा सकते। हमें कभी पीछे नहीं रहना। जितना अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नेकी का मौका दिया, ये समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे राजी होना चाहता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कह दी, रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने ऐसे हालात में अल्लाह के दीन को अपनाया जब सब कुछ छोड़ना लग रहा था। अल्लाह की तरफ आना ऐसे था कि जैसे सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जैसे वक्त में साथ भी कदम रहा, जब अल्लाह की तरफ आना अपनों को नाराज करने का जरिया था। यह ऐसा शख्स था कि जिसने अल्लाह की तरफ आने वालों को थाम लिया। ऐसे लोग फिर सिर्फ दुनियावी रिश्तों की बुनियाद पे नहीं जुड़ते, ये दीन के रिश्ते में जुड़ते हैं। ऐसे बामकसद लोगों को अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाता है, और अल्लाह की रजामंदी की दलील क्या है कि फिर उनको जन्नतों में दाखिल कर देगा। लेकिन आखिरी बात, वमिम्मन हौलकुम मिनल अअरबी मुनाफिकून, ऐसे लग रहा है कि साबिकून अलवलून के बाद मुनाफिकीन का लफ्ज आ जाना इस बात को बताता है कि मुनाफिक तो वो शख्स है कि जो इस्लाम का दावा तो करे, मुसलमान होने का दावा करे, लेकिन जब हिजरत और अल्लाह के रास्ते में दूसरों की मदद करने का वक्त आए तो उस वक्त तो अपने आप को राजी ना कर सके और रब को राजी ना कर सके। आज भी अगर कोई अल्लाह को राजी करना चाहता है तो उसको उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा जिनसे अल्लाह राजी हो गया। आज दुनिया में अभी आप देखिए कि कोई एक्सपर्ट होता है तो उसकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहते हैं, कहते हैं नहीं इसकी प्रैक्टिस कामयाब है इसी के पास चलते हैं। सहाबे कराम की दीन की प्रैक्टिस बहुत कामयाब थी। ये वो लोग हैं जिनको उनके रिपोर्ट कार्ड दुनिया में मिल गए। हर इंसान को दुनिया में भी मिलता है, कब्र में जाके भी मिलता है, उसको हशर में भी मिलेगा, लेकिन सहाबे कराम को तो अल्लाह ने दुनिया में उन जन्नतों की सैर करवा दी जहां मरने के बाद दाखिल किया जाएगा। इत्मीनान की जन्नतें, सुकून की जन्नतें, हम में से जो जन्नत में जाना चाहे वो ऐसे ही लोगों की जिंदगी को पढ़ ले। हमारा एक सिलसिला है, रमजान के बाद दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। एवरी थर्सडे एक क्लास होती है हयात सहाबा के दरख्शां पहलू। हर वीक एक सहाबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और वाकई मुझे लगता है कि पूरा वीक वो हमारे लिए सोचने के लिए काफी होता है कि उन्होंने दीन को किस कीमत पे लिया और हम आज किस कीमत पे ले रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने कुर्बानियों की कीमत पे लिया, हम आज खुशफहमियों की कीमत पे लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखरूना तरफू बिज़ुनूबिहिम खलतु अमलन सालेहम वाखर सईजियन, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी खता के इकरारी भी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे और कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाएगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके जरिए से आप इनको पाक और साफ कर दें, और इनके लिए दुआ कीजिए, बेशक आपकी दुआ इनके लिए इत्मीनान का जरिया है और अल्लाह ताला खूब सुनता है खूब जानता है। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है। आप कह दीजिए तुम अमल करते जाओ, तुम्हारे अमल खुद अल्लाह देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और जरूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीजों का जानने वाला है, सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुलतवी है, इनको सजा देगा या इनकी तौबा को कबूल कर लेगा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और बड़ा हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 102 से 106। इसका उनवान लिखिए, गलती तो हुई लेकिन गलती पर कायम नहीं रहे। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनकी तबीयत अच्छी होती है, सलीम तबा होते हैं, शर नहीं होता, मामूल वाले दीनी काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब कभी दीन का कोई ऐसा तकाजा सामने आ जाए कि जिससे उनको अपनी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली करनी पड़े और माहौल के रंग से अपने आप को एक मुख्तलिफ रंग में रंगना पड़े, तो ऐसे लोग उस वक्त फिर इस इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं और अपने आप को और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में नहीं पा सकते। कभी कभी कुव्वते फैसले की कमी इसका जरिया बनती है, और बाज दफा दुनिया में कसरत से मशगूल होना। दोहरा दूं अगर अपनी बात को, कुछ लोग अपनी तबीयतों के एतबार से अच्छे होते हैं, लेकिन जिंदगी की जरूरियात निभाने में कभी कभी कुव्वत फैसला की कमी, यानी डबल माइंडेड है, डिलेइंग पर्सनैलिटी है, पोस्टपोन पर्सनैलिटी है, अभी नहीं कर लूंगी, अभी नहीं, अभी थोड़ा और, अभी और बस दफा वाकई फिर दुनिया उनका इतना हिस्सा ले जाती है कि वो दीन के किसी अहम तकाजे से पीछे रह जाते हैं। अल्लाह की निगाहों में ये भी मुजरिम है, कसूरवार है, लेकिन इनका ये कसूर उस वक्त माफ कर दिया जाता है जब कोई इनको एहसास दिलाए और वो दिल की शर्मिंदगी के साथ अपने छोड़े हुए कामों को करने लगे। और किसी के दिल में गुनाह के बाद तौबा का ख्याल आ जाना, एतराफ और शर्मिंदगी का जज्बा पैदा हो जाना, असल में इस बात का इजहार होता है कि अब मैं दीन के तकाजे पूरे करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा शख्स है जो अपने एहसास गुनाह को धोने के लिए अपने महबूब माल का एक हिस्सा अल्लाह की राह में देना चाहता है। ऐसे लोग जब अल्लाह के नबी के पास आए तो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि ले लो, ताना ना दो, खुश मिनम वालिम, ले लो, बल्कि इनके लिए दुआ भी कर दो, इनको नफसियाती सहारा दो, इनको दुआएं दो ताकि गुनाह का जो बोझ इनके दिलों पर पड़ चुका, इनका वो बोझ दूर हो जाए और इनके अज्म और इरादे में मजबूती आने लगे। ये है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह कभी किसी को ताना नहीं देता, अल्लाह ताला कभी किसी को ये नहीं कहता कहाँ से आए हो और कितनी दूर से पलट के आए हो। हाँ, अल्लाह की निगाहों में सबसे बड़ी गलती किसी इंसान की क्या है कि बंदा गलती करे और उस पर कायम हो जाए और उसको शऊर दिलाया जाए तो तावीलें ढूंढे, बहाने बनाए, मेरी ये मजबूरी, मेरे ये हालात हैं। ऐसे लोग अल्लाह की निगाहों में मुजरिम है। देखिये, जब भी किसी इंसान से कोई गलती होती है ना, उसके बाद दो में से एक चांस जरूर होता है। पहला क्या कि इंसान गलती का एतराफ करे और दूसरा क्या कि ढीठ बन जाए। जो एतराफ़ करेगा ना, उसके अंदर आजिज़ी पैदा होगी, तवाज़ो पैदा होगी, वो दोबारा अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला तौबा करके। लेकिन जो शख्स ढीठ बन जाए, फिर वो रीजनिंग करेगा, फिर वो लॉजिक पेश करेगा, वो शख्स अपनी गलती को दूसरे के नाम में डालने की कोशिश करेगा, वो कभी अपने ही प्यारे रिश्तों का नाम ले लेके कहेगा कि ये उसकी वजह से हुआ और ये उसकी वजह से हुआ, तो गोया कैसा शख्स जो है एक गलती को बचाने के लिए कई और गलतियां करने लगता है। ऐसा शख्स फिर अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है। मैं हाईलाइट करवाना चाहूंगी पहली ही आयत जो हमने इस हिस्से में पढ़ी, वाखरूना तरफु बिज़नूबिहिम खलतु अमलन सालिहं व आखर सय्या। इसको हाईलाइट कर लीजिए। पीछे दो मुतालबे उम्मत मुस्लिमा से गुजर चुके अभी तक के 10 पारों में। पहला मुतालबा सूरत बकरा में था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कह लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और दूसरा मुतालबा नहीं बल्कि दूसरी चीज जो खबर थी यहूद की, वो पहले पारे में थी, अफतु मेनू नबी बा दिल किताबी व तक फुरू नबी बा, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर तो ईमान लाते हो और कुछ को छोड़ देते हो। उन दोनों आयतों के साथ बाद में आपने इस तीसरी आयत को लिखना है। ये आयत आपकी आयत तदब्बुर है और फिर बाद में खुद से सवाल करना है, क्या मैं कुछ अमल करके कुछ गुनाह भी तो नहीं करती। देखिए कि आज का मुसलमान एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गया। आप इस हिस्से का ये एक और उनवान भी लिख सकते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी, डबल माइंडेड पर्सनैलिटी। मस्जिद में जाते हैं तो नेक, घर में आते हैं तो कुछ और, पार्टी में जाते हैं तो कोई तीसरा रूप, जैसी जगह वैसा रिद, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। ऐसे नामे अमाल कल क्यामत के दिन इंसान को किसी मुकाम पे तो हंसाएंगे और किसी मुकाम पे रुलाएंगे। किसी एक घर में खुशी की खबर हो और साथ गम की खबर आ जाए, क्या बनेगा। एक तरफ से आपको $10,000 मिलने की कोई खुशी मिले और दूसरी तरफ से पता चले कि 12,000 की चोरी हो गई है। ये नुकता हमारे बहुत समझने का, सोचने का। हम नेकियों में तो खूब भरते हैं माशाल्लाह, और रमजान आता है तो हमारी नेकियां देखने के काबिल होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों का क्या हाल है। कि अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया कि तुम फुला फुला नेकी कर लो तो उसके बाद तुम्हारा हर गुनाह माफ है। नहीं, देखिए कि नेकियां बहुत हो जाना बड़ी बात नहीं है, असल बात यह है कि उसके मुकाबले में कोई गुनाह ना हो या इतने ना हो कि नेकियों को खा जाए। आप सोचें, एक तराजू है और उसके एक पलड़े में नेकियां रखी जा रही है और दूसरे में गुनाह रखे जा रहे हैं। जिसका वजन ज्यादा होगा वही चीज इंसान की निजात का जरिया होगी या पकड़ने का जरिया होगी। अब हम नेकियां तो खूब करें, अपनी हर नेकी को तसव्वुर में रखा करें कि मैं पलड़े में डाल रही हूँ, एक बड़ा सा तराजू है, उसमें रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, भारी हो रही है। अब दूसरी तरफ जरा गुनाहों को रखते जाएं, क्या आपकी 2,000 नेकियां भी आपको जन्नत दिलवा सकती हैं अगर उसके बिल मुकाबिल हमारे पास वहां 2,001 गुना है। मिसाल दे रही हूँ समझने के लिए, अल्लाह के म्यार फर्क है, वहां तो एक को 10 के साथ और न जाने क्या कुछ है, वो इस वक्त बहस नहीं। सिर्फ एक बात है शऊर को बेदार करने की, कि आप एक तरफ चीज रखते जाएं दूसरी तरफ बाट बढ़ाते जाएं, 5 का रखा फिर 6 का रखें, ऐसा अब जितनी मर्जी चीज रखते जाएं जब बाट बढ़ता जा रहा है तो आप तो कभी भी इवन पे नहीं आएंगे। तो अपनी नेकियों की हिफाजत करनी है, कैसे, गुनाहों से अपने आप को हत्तुल वसा बचा के। देखिए, मुकम्मल नहीं को बचेगा, ये मैं आपको भी बताऊं, कोई इंसान है जो वो नहीं बचेगा, जो ये दावा करेगा वो झूठा है, लेकिन बात यह कि शऊर तो हो। आप घर गंदा करें तो घर गंदा करते जाएं, देखिए क्या होता है, आपके रहने की जगह नहीं होगी। अगर आप साथ साथ घर को साफ नहीं करते जाएंगे ना रोज के रोज, तो एक वक्त आएगा उस घर में आपकी जगह ही नहीं होगी, क्योंकि आपने गंदगी फैला दी। असल तरीका क्या है, रोज घर फैलता है फिर वो सिमटता है, रोज साफ करते हैं, रोज चीजें गिरती हैं फिर उठती हैं, इंशाल्लाह घर साफ रहते हैं। हर वक्त तो कोई घर साफ नहीं रहता, वो तो फिर कोई होटल ही होगा या वो जगह होगी जो बेजान है। पूरा नामे माल तो तभी पाक होगा जब इस रूह और बदन का ताल्लुक टूट जाएगा। इंसान से गुनाह होते जाएंगे, लेकिन एतराफ, शर्मिंदगी कि अल्लाह ये हो गया, मैंने क्यों किया। और इंशाल्लाह जब सफाई की सोच के साथ अपने आप को साफ रखेंगे, तो उम्मीद है कि अल्लाह के पास जब जाए तो जो गुनाह है अल्लाह ताला उसको मटा चुका हो। और ये अल्लाह की एक बड़ी बड़ी रहमत है कि वो गुनाहों को तो वाइप आउट कर देता है, लेकिन नेकियों को कभी वाइप आउट नहीं करता। एक और उसकी रहमत है, और वो क्या कि अल्लाह ताला ने इसाले सवाब जो है वो नेकियों की सूरत में तो रखा है, लेकिन गुनाहों की सूरत में नहीं रखा। मिसाल देती हूँ कि जैसे कोई शख्स दुनिया से चला गया, हमारी उससे बस दुआ सलाम थी, हमें क्या हुक्म है कि उसके लिए दुआ कर दो, बहुत अच्छी बात है, अब कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन दुआ कर दी अच्छी। और फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे कि हमारे बाद कोई हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए, अल्लाह करे ये आग में जाए, अल्लाह करे ये आग में जाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, हमने उससे कोई ज्यादती नहीं की, तो याद रखिए कि उसकी बददुआ में नहीं लगेगी। कोई आपकी तरफ से सदका कर दे, $10 की कोई चीज ले और किसी के लिए दे दे कि अल्लाह करे इसको अजर मिले, मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा इसके दलाइल मौजूद है। लेकिन कोई आपकी तरफ से एक मूवी खरीदे और किसी को दे और कि अल्लाह करे इस मूवी के देखने का गुना इसको हो, कभी नहीं होगा, ये उसकी रहमत है। इतनी रहमतों के बावजूद अगर कोई फिर उसकी तरफ नहीं आएगा, तो फिर ये वही है कि जिसने जन्नत की तरफ ना जाने का इरादा कर लिया है। तो लिहाजा शऊर के साथ जीना है, गंदगी के साथ नहीं, सफाई पसंदी के साथ इस दुनिया से गुजरना है। वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीकम बैनल मुमिनीन, और बस ऐसे हैं जिन्होंने नगराज के लिए मस्जिद बनाई के जरर पहुंचाएं और कुफर की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डाल दें और इस शख्स के क्याम का सामान करें जो इससे पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खा जाएं कि बजुज भलाई के हमारी कुछ और नीयत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। ला तकुम फीही अबदा, आप इसमें कभी खड़े न हो। अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी है जो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। फिर क्या ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर इसको लेकर आतिशे दोजख में जा पड़े। और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ नहीं देता। इनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई हमेशा इनके दिलों में शक का कांटा बनकर खटकती रहेगी। हाँ, मगर इनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाएं तो खैर और बात है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 107 से 110। इसका उनवान है जिंदगी की तामीर की दो बुनियादें, तकवा और जुल। ये है वो बुनियादें जिसके ऊपर लोग अपनी जिंदगी को कायम रखते हैं। कुछ की जिंदगी तकवा वाली जिंदगी होती है, अल्लाह से डरना। जो शख्स अल्लाह से डरेगा उसकी जिंदगी सारी की सारी ऐसी होगी जो रब चाहे, वो दीन का काम करे या दुनिया का काम करे, उसको हर लम्हे ये एहसास रहेगा कि मेरा मामला उस जात के साथ है जो जाहिर को भी देख रहा है बातिन को भी देख रहा है। ऐसा शख्स ना किसी इंसान पे जुल्म करेगा ना किसी जानवर पे करेगा। आप समझ लीजिए कि ये वो शख्स है कि जिसकी नेकियां एक मजबूत चट्टान की सूरत में कल क़यामत के दिन खड़ी हुई मिलेंगी। अगर दूसरी सूरत देख ली जाए कि जिसमें कोई इंसान जुल्म की रविश पे जिएगा तो बिल्कुल एक कैद जिंदगी गुजारेगा, जैसा चाहो जियो, कोई पाबंदी वो कबूल नहीं कर सकेगा। उसकी जिंदगी ऐसी ही होगी कि जो उसके सामने आएगा वो उसको अपनी ख्वाहिशों के आगे रौंद के आगे निकल जाएगा। ऐसा शख्स एक ऐसी इमारत कायम कर रहा है कि जो एक खाई के ऊपर है। कभी आपने समंदरों के किनारे कुछ पत्थर ऐसे देखे हों कि ऊपर से तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन नीचे से पानी की जो लहरें होती हैं मुसलसल उनके टकराव से वो पहाड़ घुल चुके होते हैं। मेरे तस्वर में ऐसे कई पत्थर और पहाड़ आ रहे हैं कि जिसमें ऊपर से बहुत दूर तक होता है लेकिन नीचे से खाया गया होता है। अब कोई भी शख्स वहां जाता है, अगर माँ बच्चे को जाता देखे तो चीख पड़ेगी, उसको लगता है कि शायद अभी इस बच्चे के बोझ से ही ये किनारा जो है ये भुरभुरा होके गिर जाएगा। अब तसव्वुर में लाइए कि एक शख्स उस किनारे के ऊपर एक घर बनाना चाहे, कितना रिस्क है। हो सकता है कि उसकी ईंटें लाते ही वो अभी बुनियादें भी नहीं खोद पाए और वो उसकी जगह से गिर के चली जाए। ये है जुल्म वाली जिंदगी का अंजाम। बाज लोग बाज दफा क्या करते हैं कि दुनिया में बहुत नेकी का भी काम करते हैं, अब ये इमारत जो थी, यहाँ हमने जो सिंबल समझी, ये एक हकीकी वाक्य ऐसा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, अबू आमिर राहिब उसका नाम था। जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई को सियासी हैसियत मिली हुई थी वहां, इस तरह इस शख्स का मजहबी मुकाम था। राहिब था, पहले मुशरिक था लेकिन फिर ईसाई बन चुका था। इसने अपनी खूब वहां दुकान गर्म की हुई थी और लोग इसको एक बहुत बड़ा राहिब या पादरी इस तरह से समझता था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो इसके दिल में एक कांटा लगा कि ये क्या बात हुआ, ये मेरी जगह इसने ले ली। और ये कांटा बहुत सारों को चुभता है और ये शैतान चुभ होता है, हालांकि कोई किसी की जगह नहीं लेता, लेकिन इसके दिल में ख्याल था कि मैं पहले से दीनदार था, अब एक और दीनदार यहाँ आ गया, नतीजा क्या होगा कि बस अब मेरा तो रास्ता खत्म हुआ। इसने अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लम के खिलाफ समझ लिया। हर कोशिश इसकी ये होती कि आपको पकड़े और आपके बारे में शोशे फैलाए। जितनी भी मुसलमानों की जंगें हुई उसके अंदर अब्दुल्ला बिन उबई और इसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक मौजूद था। अब हुआ क्या कि ये शख्स अपनी एक पूरी जमात बनाना चाहता था कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी और दीन इस्लाम को नुकसान दे। अब मसला क्या था कि जब वो जगह बनेगी तो फिर लोगों को पता चलेगा और ऐसी चीज खुफिया नहीं रहेंगी। दूसरा ये करना क्या चाहता था कि अपने इस काम को दीन के रूप में करना चाहता था ताकि लोगों के अंदर इसकी मजहबी हैसियत भी रहे, क्योंकि आप देखिए एक दीनदार खुल के अगर किसी शराब की दुकान पे खड़ा हो जाए तो लोग कहेंगे ये अब दीनदार ही नहीं रहा, नहीं उसको खड़ा होना फिर किसी मस्जिद में होगा। लिहाजा इसने क्या किया, मदीना के अंदर दो मस्जिदें पहले से मौजूद थी, एक मस्जिद जो थी वो मदीना के अंदर मस्जिद नबी थी, दूसरी कुबा में थी, और ये दोनों मस्जिदें जो थी ये मुसलमानों की जरूरत को पूरा कर रही थी। लेकिन इसने एक तीसरी मस्जिद का आगाज किया और इसका ख्याल क्या था कि चलो एक तो ये है कि इसकी वजह से मुसलमानों को तोड़ेंगे, तफरीक आएगी, क्योंकि तफरीक मुसलमानों को तोड़ने का काफरों के पास सबसे पहला हथियार रहा। दूसरा इसका यह था कि चले हमें एक ऐसा फोरम मिल जाएगा, एक ऐसी जगह होगी जहां बैठ के इस्लाम के खिलाफ अपनी सरगर्मियों को कायम रखेंगे, नतीजा क्या होगा, लोगों को हम पे शक ही नहीं होगा। फिर इसी तरह कुछ और इसके बातें लजायम थे, इसने एक मस्जिद बनवाई। अब अल्लाह के नबी को बुलाया, चाहता क्या था कि एक दफा अल्लाह के नबी आके यहाँ नमाज पढ़ दें तो गोया कि ये लीगल हो गई, ये रजिस्टर होगी मस्जिद, कि अल्लाह के नबी ने इसको अप्रूव कर दिया, ये अच्छी ही होगी। अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा कि जी ये मैंने मस्जिद बनी है तो आप इसमें आके नमाज पढ़ा दें। अल्लाह के नबी का दिल कोई गंदा नहीं था, वो कभी किसी के लिए ये नहीं सोचते कि भाई तुमने क्यों बनाई। आपने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल वो दिन थे जिसके लिए तबूक की तैयारियां थी और असाब शिकन हालात थे जो मुसलमानों को दरपेश थे। आपने कहा कि मैं जब तबूक से वापस आऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई ग्रज नहीं, क्यों वाय वट सो This, that, nothing. बस कर दूंगा। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तबूक के रास्ते से तो आयतें नाजिल हो गईं कि मत जाइएगा, आपको नहीं पता वो मस्जिद के रूप में कितनी बुरी जगह है और वो तो मुसलमानों के खिलाफ है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह के हुक्म से ही उस मस्जिद को गिरवाया और फिर वो मस्जिद खत्म हो गई। इससे एक चीज पता चली कि मस्जिद ही क्यों ना बने, नेकी का इससे बड़ा काम हमारे यहाँ क्या समझा जाता है कि मस्जिद बनाई जाए। लेकिन जिस मस्जिद के बनाने की इन तीन में से कोई एक वजह हो, पहली वजह जरर देने के लिए, कुफर के लिए, और तफरीकम बैनल मोमिनीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हिदायत दे। जरर क्या है कि वो मस्जिद जिसको अल्लाह के नाम के सिवा किसी और नाम की प्रमोट करने के लिए बनाया जाए। आज आपको होता है कि शिर्क का कसीर हिस्सा मस्जिदों से उठ रहा है, लोग किसी बाजार से शिर्क वाली बातें और ऐसी करामते नहीं सुन के आते, वो मस्जिदों से सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हर वो मस्जिद जिसकी बुनियाद जुल्म पे होगी, और इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, आप उसको मस्जिद नहीं कहेंगे। फिर दूसरी बात जरर देने के लिए, क्या जरर, के लोगों को पकड़ के जरा इधर से उधर ले जाए, तकलीफ देने के लिए। बाज दफा आप देखिए कि इस किस्म की कोशिशें होती हैं दीन के नाम पे कि लोग अपनी क्यादत और अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए ऐसी जगहों के ऊपर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए जो इस वक्त का करंट इश्यू है, तफरीकम बैनल मोमिनीन, इसने मुसलमानों की आबादी को तोड़ना चाहा, फोड़ना चाहा। ये है वो चीज जिसको आज भी हमारे दुश्मनों ने मुसलमानों के अंदर इस्तेमाल कराया। देखिए मस्जिद बनना बनाना अल्लाह की रहमत है, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई ये ना सोचे कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए, मस्जिद की अहमियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की मस्जिद हो कि जिस तरह कोई बाजार में चला जाए, और आपने कभी देखा है कि कुछ दुकानदार होते हैं ना वो फारिग बैठे होते हैं, बाजी इधर आ जाओ, बाजी इधर आ जाओ, बाजी इधर आ जाओ, कि जिस तरह सड़कों पर बैठ के लोग इस तरह अपनी दुकानों पर बुलाते हैं, इस तरह अगर लोग मस्जिदों में आने, या मस्जिद के आगे पे हर चीज को ले लीजिए जिसको भी दीन के नाम पर आप कोई इदारा या कोई ऐसी चीज करते हैं, कि लोग लोगों को सिर्फ उसमें बुलाना ही एक मकसद हो जाए, और क्यों कि हमारी मस्जिद में ज्यादा लोग आए। मैं हैरान होती हूँ कि बाज दफा लोग इस तादाद के चक्कर में क्यों लग जाते हैं कि इस मस्जिद में तो थोड़े लोग आते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा ज्यादा आते हैं तो चलते हैं, जैसे कोई नया मॉल बनता है ना तो लोग उस तरफ जाते हैं शौक से। इस तरह मैं देखती हूँ कि शहर में कोई नई मस्जिद बनती है ना तो लोगों का रुख उस तरफ होने लगता है, चलो देखने जाते हैं, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बहरहाल काम इंसान कोई भी करे उसके लिए बहुत सख्त इम्तिहान है कि नीयत क्या है। اب اس بنیاد پہ آپ خدا کے لیے ہر مسجد کو تولنا نہ شروع کر دیں، ہر دینی شخص کے اوپر شک کرنا نہ شروع کر دیں۔ یہ قرآن اس وقت ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے عملوں کے قبلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نیکیوں کے کاموں کو چیک کریں۔ کبھی کہیں کوئی نیکی کا کام کریں تو چیک کریں کہ کیا اس کی واقعی ضرورت ہے، کیا ایسا ہی کوئی کام بالکل سیم چیز ہو تو نہیں رہی، ہو رہی ہے؟ آپ کا بھی شوق ہے، جائیے ان سے بات کیجیے کہ بھائی کیا خیال ہے، مجھے بھی کچھ خدمت کا موقع دیں، چلے مل کے کوئی کام کرتے ہیں۔ آپ اسی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں کام آپ کام کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو ضرورت بھی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور جگہ دیکھیں۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بڑے موقع رکھے ہیں، تو لہٰذا ایمان اور تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی عمارتیں قائم کرنے کی توفیق دے کہ جن کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ ایسی بھی ایکسٹریم دیکھی کہ ہر دین کا کام کرنے والا اپنی مسجد کو مسجد تقویٰ کہتا ہے اور دوسرے کی مسجد کو مسجد درار کہتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسے بھی واقعہ تاریخ میں ہوئے کہ جب دو مسجدیں اتنی قریب ہوتی تھی تو ان میں سے گرائی گئی، اور پوچھا جاتا تھا بتاؤ اس سے پہلے والی کون سی تھی۔ اس دور میں تو یہ تفرقے تھے ہی نہیں نا کہ یہ کس مسلک کی تھی۔ اچھا پہلے تو صرف مسلک کا نام سنتے تھے نا کہ بھئی کس مسلک کی، آپ مسلک کو پروموٹ کرنا ہے تو آف کورس پھر ہم دوسرے کی مسجد میں تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اب مسئلہ ہو گیا قومیت کا، اچھا وہاں بنگالی رہتے ہیں یا پنجابی رہتے ہیں، کہ اچھا وہاں فلاں رہتے ہیں، یعنی ہم اس طرح بٹے کہ کتنی ہی سب برانچز ہوتی گئیں، تو لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ امت نہیں بھیڑ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بھیڑ کو امت میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوششیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے کسی قوم کے اندر ایک مقصدیت کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ ابھار سکیں، اللہ تعالیٰ یہ خدمت ہم لوگوں سے قبول فرما لے۔